ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम को शुरू करने से पहले जो मंगलाचरण किया जाता है उसको हम करेंगे। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेन्दुस्तम सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिलाश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षताम् तमोन्धम् संसारिणाम् करुणयः पुराणगुह्यम् तम् व्याससूनमुपयामि गुरुम् मुनीनाम् नारायणम् नमस्कृत्य नरम् चैव नरोत्तमम् देवीम् सरस्वतीम् व्यासम् ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। सभी भक्तों का स्वागत है आज की प्रातःकालीन भागवत कक्षा में। हम लोग आज छठे स्कंद के दशम अध्याय के ग्यारहवें श्लोक पे कुछ विचार करेंगे। श्री बादरायण निर्वाच एवं कृत व्यवसितो दध्यंगाथर्वणस्तनुम् परे भगवती ब्रह्मण्ये आत्मानं सन्नयं जहौ। हम लोग पहले श्लोक की धारणा करते हैं। शब्द बड़े स्पष्ट हैं क्योंकि जब शब्दार्थ बोला जाता है तो स्वाभाविक रूप से हम लोग अपने मन को स्विच ऑफ कर लेते हैं। तो देखा जाए श्लोक को आंख गणा कर देखिए, हम शब्द के अर्थों को देखते हैं। श्री बादरायणी उवाच मतलब सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, बड़ा स्पष्ट है। एवं कृत व्यवस्थित, व्यवस्थित मतलब होता है संकल्प लिया, इस प्रकार से निश्चय किया। इस प्रकार मतलब इससे पहले के कुछ श्लोक जो हैं वह शिला दधीचि मुनि ने बोले हैं और यह उनका वक्तव्य दिखा, उसके वक्तव्य के द्वारा हम जानते हैं कि वह अपने शरीर से आसक्त थे, फिर भी एक उच्चतर उद्देश्य के लिए उन्हें अपने शरीर को त्यागा, तो इसलिए शब्द आ रहा है एवं। इस प्रकार से सोचते हुए वह इस निश्चय पे आए। इस जगत में हम बहुत सारे निश्चय करते हैं और उन निश्चयों के पीछे बहुत सारे विचार होते हैं, तो यह जो श्लोक का पहला शब्द है एवं, यह पिछले विचारों से इस श्लोक को कनेक्ट कर रहा है। और हम अगर समय मिला तो उन विचारों पर भी विचार करने का प्रयास करेंगे कि क्या सोच करके ऐसा किया। एवं मतलब होता है, एवं से आप अर्थ समझ रहे हैं, इस प्रकार से सोच करके इस निश्चय पे आए कि मुझे अपना शरीर अब देवताओं की सहायता के लिए और भगवान को देना है और खुद को भगवान को समर्पित करना है। दध्यंक, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। दध्यंक का अर्थ हो गया दधीचि ऋषि, अथर्व मतलब उनके अथर्व ऋषि के बेटे, तनुम का अर्थ होता है शरीर। तो यानी कि अब उन्हें निश्चय कर लिया दधीचि ऋषि ने, दधीचि ऋषि जो अथर्व मुनि के बेटे थे, उन्होंने यस इस प्रकार से सोच करके निश्चय कर लिया कि वह अपने तनु को, अपने शरीर को त्याग देंगे। शरीर को तो त्याग देंगे, अपने को कहां समर्पित किया, तो कह रहे हैं परे भगवती ब्रह्मणी, उन भगवान में जो प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं, उन भगवान में अपने को समर्पित किया। और आत्मानम सन्नयन जहो, अपनी आत्मा स्वयं ही, आत्मानम स्वतः ही अपने शरीर को इन तत्वों में मिला दिया। तो अर्थ शायद समझ पा रहे होंगे। अब शब्दार्थ कब देखिएगा, बहुत इजी हो जाएगा। श्री बादरायण रुवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं, इस प्रकार कृत व्यवस्थित, निश्चय करके कि क्या करना है, देवों को शरीर देना है। दध्यंग दधीची मुनि आथर्वण अथर्वा का पुत्र तनुम शरीर को, परे परम भगवती भगवान को, ब्रह्मणी परब्रह्म को, आत्मानम स्वतः आत्मा, सन्नयन भेंट करके, जहौ त्याग दिया। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा इस प्रकार अथर्वा के पुत्र दधीची मुनि ने देवताओं की सेवा के लिए अपना शरीर त्यागने का निश्चय किया। उन्होंने अपने आप यानी आत्मा को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरणारविंद में रखकर पंचभूत से निर्मित अपने स्थूल शरीर को त्याग दिया। देखिए एक अद्भुत बात है कि दधीची ऋषि अपना शरीर त्याग दे रहे हैं और हम क्लास में अपना मोबाइल भी नहीं त्याग पाते, तो यह तो बड़ी खराब बात है। तो शायद अपने जो हमारे हम सबके बच्चे हैं ना, यांत्रिकी बच्चे, मेरा बच्चा सोया हुआ है अभी, तो आप लोग के बच्चों को भी थोड़ी देर के लिए सुला देंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। इतना तो कर सकते हैं भगवान की सेवा के लिए। तो यहाँ पे क्या बातें समझ में अगर नहीं आ रही होंगी तो उसमें हम देख लेते हैं। वह है पंचभूत से निर्मित अपने स्थूल शरीर के लिए, स्थूल शरीर को त्याग दिया। ये नहीं बोला जा रहा है कि स्थूल शरीर छूट गया। इस जगत में प्राय लोगों को स्थूल शरीर उनका छूट जाता है, वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन यहां बोला जा रहा है हमने त्याग दिया। इससे पहले भी वो बोल चुके हैं बहुत सुंदर वचन कि यह शरीर जो है वह कुत्ते और अगर छोड़ दिया जाए मरने के बाद तो कुत्ते और गिद्ध खाते हैं, तो इसकी कोई खास मूल्य नहीं है, लेकिन इसका उपयोग मैं भगवान की सेवा के लिए करूंगा, देवताओं की हेल्प के लिए, सहायता के लिए करूंगा, तो मेरा परम कल्याण होगा। तात्पर्य मेरे ख्याल से आपको अनुवाद तो समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई कठिनाई नहीं, तात्पर्य को देखेंगे। जैसा कि परे भगवती ब्रह्मण्य आत्मानम सन्नयन शब्दों से प्रकट है, दधीची ने अपनी आत्मा को स्वयं श्री भगवान के चरणों पर चढ़ा दिया। इसका अर्थ क्या है? हम लोगों को भोग लगाने का तो अनुभव है कि दाल चावल और हम गुलाब का फूल भगवान को अर्पित करते हैं, लेकिन आत्मा को भगवान को समर्पित करने का अर्थ हमें समझ लेना चाहिए। हमने अभी क्या समर्पित नहीं किया हुआ है? अपने अहंकार को, अपनी इंडिपेंडेंस को, क्या कहेंगे, स्वतंत्रता को हमने समर्पित नहीं किया हुआ है। तो ये अपने को कृष्ण को समर्पित करने का बहुत सीधा सीधा अर्थ है कि मैं कृष्ण का दास हूं और मैं अपनी स्वतंत्रता को त्याग करके आपकी शरण में आया हूं। इस बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। रोज रोज अगर हो सके तो रोज मंगल आरती के समय हम भक्तों को कृष्ण बलराम गौर नीता या राधा श्याम सुंदर प्रणाम करने के बाद यही प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान अनंत जन्मों से मैं आपको भूला हुआ हूं, अब मैं आपकी शरण में आया हूं या आई हूं, आप कृपया मुझे स्वीकार कर लीजिए। तो इससे मुझे क्या फायदा होगा? भगवान कहते हैं अगर कोई ऐसा कहता है तो शाश्वत काल के लिए मैं उसको माया से मुक्त कर दूंगा। चेतन चरितामृत में वर्णन है। एक बार भी कोई इस प्रकार से प्रार्थना करता है तो आप कहेंगे प्रभु जी हमें तो ये आर्टिफिशियल लगता है। ये आर्टिफिशियल नहीं है, यही रियल है। आर्टिफिशियल तो ये जगत के संबंध है और जगत की सेवा है। जैसे आप यहां देख रहे हैं कि दधीची ऋषि अपने शरीर को समर्पित कर रहे हैं, तो क्या इस जगत में हम लोग नहीं देखते कि लोग कृत व्यवस्थित होते हैं? किस प्रकार से होते हैं कि मैं अब इस जॉब को प्राप्त कर लिया हूं, अब पूरा जीवन में इस अपना पूरा शरीर से मन से वाणी से इस संस्था का या इस व्यक्ति का या पति का सेवा करूंगी या करूंगा, क्या हम नहीं देखते इस जगत में? मैं जब जॉब करता था थोड़ी देर के लिए, मतलब कुछ महीनों के लिए था, जॉब नहीं कर रहा था, तो मैंने एक सीनियर को देखा, वो खुद बोल रहे थे कि हमने अपना पूरा जीवन दे दिया इस कंपनी के लिए, लेकिन कोई रेसिप्रोकेशन नहीं, कोई आदान प्रदान नहीं है। कोई सेवा स्वीकार भी कर ले तो सेवा का समुचित मूल्य हाँ प्रतिदान में नहीं कर सकता। एक हमारे भक्त हैं, अब तो बुद्धिमान हो गए, तो उन्हें आश्रम ज्वाइन कर लिया, तो बता रहे थे कि जो बहुत अच्छा बिजनेस देते थे, बहुत मेहनत करते थे, वो तो उनके सुपीरियर क्या बोलते थे, उनको पैसा तो दे रहे ना बस, खत्म। कोई प्रेम नहीं है, कोई आदान प्रदान नहीं, लेकिन भगवान एक फूल भी अगर हम अर्पित करते हैं भगवान को तो हमेशा याद रखते हैं। जैसे आप जानते हो कृष्ण बलराम जी जब पहली बार मथुरा जाते हैं तो उनको माला अर्पण करता है सुदामा और कहते हैं कि तुम जीवन एक बार माला अर्पण करा है, जो लोग रोज माला अर्पण कर रहे हैं उनका तो कहना ही क्या, एक बार अपने हाथ से बना करके माला कृष्ण बलराम को दिया तो कृष्ण बलराम जी कहते हैं कि जीवन भर तुम भौतिक रूप से सुखी रहोगे और मरने के बाद तुम मेरे धाम में आओगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, श्रीमद् भागवत में आप वर्णन पढ़ लीजिएगा, हमें अपने मन से बोलने की क्या आवश्यकता है। तो यही बात है, अपने अपने जीवन को, हमें कोई शरीर नहीं छोड़ना है, गला नहीं काटना है, कोई जहर का इंजेक्शन नहीं लगाना है, केवल यही ठान लेना है कि मेरा जीवन भगवान कृष्ण की सेवा के लिए ही है। इस संबंध में भगवद गीता के 17वें अध्याय के आखिरी के 3 श्लोक देखेंगे, मैं चैप्टर गलत नहीं हो रहा है मुझे उम्मीद है, तो उसमें 3 श्लोक भगवान बता, नहीं क्षमा कीजिएगा, 15वें अध्याय का आखिरी के 3 श्लोक पुरुषोत्तम योग, तो उसमें भगवान कहते हैं कि यह 3 श्लोक इदम शास्त्रम, श्रील बलदेव विद्याभूषण कहते हैं ये 3 श्लोक ही शास्त्र हैं। क्या शास्त्र का वर्णन है, तो कह रहे जो ये स्वीकार कर लेता है कि मैं कृष्ण का दास हूं और कृष्ण की सेवा करता है तो उसकी सफलता होनी ही है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये भाव में कोई भक्ति कर रहा है कि मैं कृष्ण का दास हूं और मैं कृष्ण की सेवा करूंगा तो भगवान स्वयं, इंग्लिश में कहेंगे ही विल मेक श्योर, हिंदी में क्या कहेंगे, भगवान स्वयं ये व्यवस्था करेंगे कि उस व्यक्ति को सफलता प्राप्त हो जाए। जहां हमारा ये निश्चय हो गया, देखिए व्यवस्था शब्द है, हमारा निश्चय हो गया कि मैं कृष्ण की प्राप्ति करूंगा, कृष्ण का दास हूं, शाश्वत धाम में जाना चाहता हूं, तो भगवान का यह भगवान का ये तो इच्छा शाश्वत रूप से है। जैसे गोप कुमार को भगवान कहते हैं कि तुम हर जन्म में सोचता था कि तुम एक बार भी तो मेरा नाम ले लो तो मैं तुम्हें लेके आ जाऊंगा, लेकिन हर जन्म में तुमने मेरा ध्यान नहीं दिया और यह इच्छा कि तुम मेरी तरफ मुड़ोगे यह मुझे एक बंदर की तरह नचाती रही और इस कारण से तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारा जन्म नहीं दे करके तुम्हें गोवर्धन में जन्म दिया, उसके बाद भगवान स्वयं जयंत के रूप में, गुरु के रूप में आते हैं, उन्हें मंत्र देते हैं और अपने धाम में वापस वो पहुंच जाते हैं। तो ये व्यवस्थिता शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और व्यवस्थिता शब्द जो है ये हमारे विचारों पर आधारित होता है। जैसे हम कभी कभी भक्तों को डांटते हैं, डांटने का स्टाइल है हमारे आश्रम में कि भाई देखो जो भक्त डंडा लेके चलते हैं वह 3 बजे पहुंच जाते हैं सुबह, और अभी हम बाइक से और दोनों टांगों से बढ़िया स्वस्थ हैं और हम 4:30 नहीं पहुंच पा रहे, तो इसके पीछे क्या है, संकल्प है। जो मैंने देखा हमारे एक भक्त थे, वो बिल्कुल उनको इतनी हालत खराब थी कि वो रस्सी पकड़े रहते थे, श्रीपति प्रभु ये हालत थी कि रस्सी पकड़े रहते थे, फिर भी मंगल आरती कोई मिस नहीं हुआ एक दिन। तो उसके पीछे क्या है, संकल्प है, संकल्प के पीछे विचार है कि मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, ये बात महत्वपूर्ण है। तो जब आपने ये विचार ले लिया कि मैं कृष्ण की सेवा करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो भगवान का भी निश्चय होता है कि इसको मैं अपने पास लेके आऊंगा। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण करे तार आत्मसम। दीक्षा के समय हम आत्मसमर्पण करते हैं कि मैं अपने स्वतंत्रता को त्याग करके गुरु के और कृष्ण के अनुसार चलूंगा, तो उसी समय कृष्ण इसको अपना मानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम जो उस पर कुछ उल्लेख कर रहे हैं कि श्री भगवान के चरणों में अपने को चढ़ा देने का अर्थ क्या है। हमें उस प्रकार से नहीं चढ़ाना जैसे कि शिव जी के चरणों में वृकासुर अपनी गर्दन काट के चढ़ा रहा था, ऐसा नहीं करना है, केवल झुकाना है, ठीक है ना, केवल झुकाना है। इस प्रसंग में धृतराष्ट्र द्वारा अपना शरीर छोड़े जाने की घटना का उल्लेख किया जा सकता है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में है, हुआ है। धृतराष्ट्र ने उन 5 तत्वों को जिससे उनका शरीर बना था पृथक करके उन्हें तत्त आगारों में बांट दिया। इस लाइन का अर्थ क्या है, ये बड़ा स्पष्ट अर्थ है। हमारा शरीर जो है वो 5 महाभूतों से बना है। महाभूत का मतलब जो बहुत प्रचुर मात्रा में है, आप सब जानते हैं धरती, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, उसके बाद मन, बुद्धि, अहंकार। तो प्रभुपाद जी क्यों क्या कह रहे हैं, इसका अर्थ 5 तत्वों से जैसे शरीर बना है उससे अपने को अलग करना, अपनी पहचान इस शरीर से अलग करना। और फिर उन्होंने यौगिक तरीके से, योग उस समय चलता था, तो यौगिक तरीके से पृथ्वी को पृथ्वी में, जल को जल में, इस प्रकार से विघटन करके शरीर त्याग दिया और भगवान के धाम चले गए। अब हम वह यौगिक तरीका तो नहीं जानते, लेकिन हमारा तरीका क्या है, भक्तों का तरीका यही है कि अपने मन को भगवान में लगाना, अपने मन को भगवान में लगाना, अपनी इंद्रियों को भगवान में लगाना, और स्वतः इसके द्वारा व्यक्ति इस विघटन को, इस शरीर को त्यागने के प्रोसेस को, इंग्लिश में शब्द यूज करूंगा, अचीव कर लेता है, लाभान्वित हो जाता है उससे। सब श्लोक है क्या, इंद्रियाणि ऋषिकेशना, कैसे शुरू होता है वो, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेणा ऋषिकेशः सेवनम भक्ति रुच्यते। जब हम भगवान की सेवा अपनी इंद्रियों से करते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो हमारी उपाधि है वह नष्ट होने लगती है। तो यही बात यहाँ पे हम जो सीख रहे हैं, पंच तत्वों से शरीर जो बना हुआ है वो छोड़ना, उसी प्रकार से भक्त भी अपनी उपाधियों से मुक्त हो जाते हैं भगवान की भक्ति करके। एक जीवन का अच्छा अनुभव है, एक बार मेरे को डेंगू हुआ था तो एकदम हालत खराब हो गई थी और हाथ भी ऐसे नहीं उठ रहा था। उसी दिन मेरी माला छूटी थी, तब महसूस हुआ था कि कम से कम ब्रह्मचारी जीवन का फायदा यह है कि ऐसी स्थिति जब आ जाती है मरने की तो कोई टेंशन नहीं है कि घर में आटा नहीं है, कि दाल नहीं है, कि चावल नहीं है, कि पीछे कोई छूट रहा है। मैंने कहा ठीक है, शरीर छोड़ देंगे, वृंदावन में तो है। ऐसे लगता है कि हम लोग भक्त लोग शरीर से बात आ सकते हैं, लेकिन वस्तुतः जब मृत्यु का समय आता है, जो भक्त लोग भक्ति करते हैं अच्छे से, स्वाभाविक रूप से इस जगत से निराशक्त हो जाते हैं। देखिए स्वाभाविक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आसक्ति को त्यागना बहुत मुश्किल है। मुझे एक भक्त बता रहे थे कि मेरी माँ ही बता रही थी कि मेरे बाबा जी जो मोटर जो पिन होती उसमें जंग लग जाती तो उसको भी नहीं त्यागते थे, मट्टी के तेल में डालते थे ताकि जंग निकल जाए, उसको फिर इस्तेमाल करें। ये स्थिति हो जाती है, एक ऑल पिन नहीं त्याग पाएंगे तो शरीर कैसे त्यागेंगे। मैंने देखा अपनी आंखों से कैसे शरीर सर पक रहा है, सब हालत खराब है, फिर भी हल्दी है कि नहीं, चावल है कि नहीं, इसी में व्यक्ति फंसा रहता है। तो ये सोचिए, शरीर छोड़ने की बात छोड़ दी, शरीर त्यागने की बात छोड़ दीजिए, हल्दी और धनिया नहीं त्याग पा रहे हैं तो कैसे शरीर त्यागेंगे। इस संबंध में वृंदावन चंद महाराज जी की बहुत सुंदर उक्ति कहना चाहता हूं, थोड़ी सी अजीब सी लगेगी लेकिन महाराज जब बोल सकते हैं इसी व्यासन से तो मैं भी उनकी बात को दोहरा सकता हूं। और यही धृतराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में वो कह रहे थे प्रभुपाद जी संबंध में कहते हैं कि धृतराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में कि जो व्यक्ति ऐसे स्थान पर मरता है जहां उसके परिवार वाले नहीं है तो वह नरोत्तम है। ये डेफिनेशन समझ में आई नरोत्तम की? जो व्यक्ति ऐसे स्थान पर मरता है जहां पर उसके परिवार वाले नहीं है तो नरोत्तम है। एक नरोत्तम रह चुके हैं, अभी परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के शिष्य थे जो मंगल आरती के लिए आ रहे थे और शरीर छोड़ दिया, किसी को हाय तौबा करने की जरूरत ही नहीं। ऐसी प्रार्थना ऐसी इच्छा हमारी होनी चाहिए कि वृंदावन में शरीर छूटे और कोई आसपास ऐसा व्यक्ति ना हो जो मेरा चित्त भगवान से अलग करके कहीं ले जाए। तो खैर महाराज ने बहुत अच्छी बात बोली इस संबंध में, बोले कि भाई देखिए शरीर घर में त्यागना बहुत गर्हित माना जाता है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से ड्राइंग रूम में कोई मल त्याग करे तो खराब माना जाएगा ना। मल त्याग करने के लिए एक विशेष स्थान है, बाथरूम है, टॉयलेट है, उसको अगर कोई ड्राइंग रूम में त्याग दे तो बहुत खराब माना जाएगा। उसी प्रकार से स्वीट होम में अगर कोई शरीर त्यागता है तो यह बिल्कुल उचित नहीं। प्रभुपाद जी ने बोले हैं कि ये कृष्ण बलराम टेम्पल इसलिए बनाया गया है कि जो लोग अब 50 हो चुके हैं वह अब नरोत्तम बनने का प्रयास करें। मैं थोड़ा घुमा के बोल रहा हूं, प्रभुपाद कहते हैं वो लोग आए यहां पे अब भगवान की सेवा करके अब भगवान के धाम चले जाए। तो हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से हम अपने शरीर की आसक्ति को त्याग सकते हैं। खूब जम के भगवान की सेवा करना चाहिए, जो सेवा भी आप कर सकते हैं। जब मैं सेवा की बात कर रहा हूं तो उसका मतलब है भगवान का नाम जप करना, भागवत श्रवण करना, हाथ पैरों से भी भगवान की कुछ सेवा करना, इससे उसमें लगे रहना चाहिए। दूसरे शब्दों में उन्होंने उन 5 तत्वों की आदि महतत्व में मिला को आदि महतत्व में मिला दिया। महतत्व प्रकृति की एकदम अव्यक्त अवस्था होती है जहां से सारा सृष्टि शुरू होती है, तो इसी में वापस मिला दिया। इसको हम अधिक समझने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमारा प्रोसेस नहीं है और मुझे समझ में भी नहीं आया बहुत। अपनी भौतिक बुद्धि के द्वारा उन्होंने भौतिक संबंधों से आत्मा को पृथक कर लिया और अपने आप को श्री भगवान के शरणारविंद में अर्पित कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल भी हमारे एक ब्रह्मचारी हमको हमारे चर्चा में बोल रहे थे कि किस प्रकार से जो मंगल आरती के समय पहले उठते हैं सुबह के समय, और मेरा भी कई बार अनुभव हुआ है, तो ये अनुभव होता है, साक्षात अनुभव होता है कि मैं शरीर नहीं है और ये दिखाता है कि कुछ भजन में प्रगति हो रही है। और नहीं तो अगर भक्त होकर भी हम यही बोलते रहते हैं, जानते नहीं कि मैं कौन हूं। कभी आप में ऐसा हुआ है भक्तों से कुछ झगड़ा, जब वो बोले जानते नहीं मैं कौन हूं तो उनको बोल रहा आप जानते हो कि आप कौन हो? तो यही तो नहीं जानते हैं कि कौन है। ऋषि के लिए तो भक्ति कर रहे हैं कि जान जाए कि कौन है कि नहीं? कई बार लोग जानते नहीं कि मैं कौन हूं। धीरे धीरे भाव आ जाना चाहिए। रोज एक आप प्रार्थना कर सकते हैं जब हम सुबह उठे कि भगवान बहुत बहुत धन्यवाद कि एक दिन आपने और दे रहे हैं मेरे को आपकी सेवा में संलग्न होने के लिए। 16 माला हो जाए तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान इतना ही कर पाया या इतना ही अच्छी कर पाया। मैं 16 माला की बात कर रहा हूं, जो लोग 64 कर रहे हैं वो भी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये जो मैं सेवा कर पाया या आपकी कृपा रही आप इससे प्रसन्न हो जाएं। इस प्रकार की भावना से हर दिन अपने को भगवान को समर्पित करना चाहिए। रात में सोते समय हम प्रणाम करके सोएं, भगवान आज मैं कुछ सेवा कर पाया, कायेन वाचा मनस इंद्रियेर्वा बुद्ध्यात्मना या वनस्र स्वभावा करोति यत्य सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयाणि। जो कुछ भी मैंने भगवान आज किया आपकी सेवा में आपको समर्पित कर रहा हूं। ये भाव रहना चाहिए। कृष्ण चेतना में चेतना बहुत आवश्यक है, ऐसा नहीं कि चेतना को गायब कर दें, चरणावृंद में अर्पित कर दिया। इस संबंध में एक दृष्टांत दिया गया है। जब कोई मिट्टी का पात्र टूटता है तो पात्र के भीतर का सूक्ष्म आकाश बाह्य बृहत आकाश में मिल जाता है। इसको हम थोड़ा समझाएंगे। मायावादी दार्शनिक श्रीमद् भागवत के इस विवरण को ठीक से नहीं समझ पाते। कोई ग्लास है क्या यहाँ पे? खाली ग्लास है, पानी के भरा हुआ ग्लास भी नहीं दिया, तो खाली ग्लास दे दो कम से कम तो मैं समझा देता, क्योंकि ये कुछ दार्शनिक चीजें हैं वो दिखाने से समझ में आ जाएगा। है कोई ग्लास? ओके, बस बस ठीक है, हमें खाली ही चाहिए। खाली है क्या? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, इसमें तो पानी भी भरा हुआ है। मान लीजिए कि इस ग्लास में पानी नहीं होता तो इसके अंदर कुछ आकाश होता कि नहीं होता? ठीक है, एक ग्लास ये, चलिए खाली आकाश, ये ठीक है, सही है। तो आप इसके अंदर, मैं कुछ जादू नहीं दिखा रहा हूं, बस ये खाली है तो इसमें अंदर कुछ भी नहीं है। आप कहेंगे कुछ भी नहीं है लेकिन इसमें आकाश है। तो ये लोग बोलते हैं कि ये जो ग्लास का आवरण हो गया ये हमारा शरीर हो गया, स्थूल शरीर, और अंदर जो आकाश बोला जा रहा है उसकी उपमा जो है जीव से दी जाती है। तो कहते हैं कि जीव की जो उपाधि है, ये जो ग्लास का कवरिंग है, इसको खत्म कर दीजिए तो जीव जो है ब्रह्म में मिल गया, वह भी ब्रह्म हो गया। इस प्रकार की धारणा वो करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी अपने एक जगह तात्पर्य में कहते हैं, क्या जीव ग्लास है? मतलब जीव घड़ा है क्या? आप उपमा दे रहे हो तो कुछ बैठना चाहिए ना, उसमें कोई सामंजस्य थोड़ा बैठना चाहिए। अपने मन से कोई भी उपमा देने से कैसे चलेगा? कहने का अर्थ यहां पर ये है कि ये जो शरीर है यह भौतिक तत्वों में विलीन हो जाएगा, लेकिन आत्मा का अस्तित्व हमेशा रहता है, क्योंकि भगवान गीता में बोलते हैं अविनाशी तु तदविद्धि, ये आत्मा कभी भी विनाशील नहीं होती है, कभी नहीं होती है। श्रील प्रभुपाद जी संबंध में तात्पर्य में कहते हैं एक जगह कि अगर आत्म साक्षात्कार की बात करोगे तो आत्म साक्षात्कार किसी को होना चाहिए ना। अगर आपने अस्तित्व ही नष्ट कर दिया तो साक्षात्कार किसको होगा? तो यही बात प्रभुपाद कह रहे हैं कि व्यक्ति का अस्तित्व, संस्कृत में कहा जाता है वैष्टि तत्व, यानी इंडिविजुअलिटी कभी समाप्त नहीं होती है, भले ही यह शरीर नष्ट हो जाए। और यह भी जानने योग्य बात है कि इस जगत में, इस जीवन में हमारा शरीर कितनी बार छूट चुका है, क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? मैं कहूं कि इस जीवन में आपने कई बार शरीर छोड़ दिया तो क्या मानेंगे? सब मान रहे हैं? अब बताइए, मैं जब 2 साल में का था, ये शरीर में था, अपनी माँ की गोद में था, मैं कैसा लगता था? छोटा बच्चा तो स्वाभाविक है, लेकिन कैसा शक्ल लगती थी आप कोई गेस नहीं कर सकते। मैं, मेरा अनुभव है, मेरे पिताजी का देह संस्कार था और मेरी मौसी का लड़का जिसको मैंने इतना छोटा देखा था वो काफी लंबा हो गया, और वो आया था तो मैं कहा ये लड़का क्यों खड़ा हुआ है पैंट शर्ट में, अजीब सा लग रहा था। बाद में चला गया, पता चला कि ये हमारी मौसी के लड़के हैं। तब मुझे समझ में आया, देखो कितना शरीर परिवर्तित हो जाता है। ऐसे मेरे बुआ जी के लड़के को देखा, वो एकदम पतला था, टिंगड़ी जैसा था, और बाद में पूरा 6 फुट का पहलवान हो गया। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये कौन है? लिटरली ये भी नहीं सोचा कि वो बुआ का लड़का है, वो है कौन ये पहचान नहीं रहे थे। तो यही देख रहे हैं कि इस जगत में भी हम देख रहे हैं कि हमारे शरीर के तत्व छूट रहे हैं। बाल तो हम लोग शेव कराते ही हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारा अस्तित्व नष्ट हो जाता है। पूरे जीवन में हमें कभी नहीं लगा कि हम परिवर्तित हो गए, क्योंकि हम कभी परिवर्तित नहीं होते हैं। आत्मा केवल देह को परिवर्तित होता हुआ देखती है, अनुभव करती है। परम पूज्य प्रहलादानंद महाराज अच्छी बात बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि हम लोग प्रचार तो करते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा, लेकिन पूरा जीवन ऐसे जीते रहते हैं कि हम शरीर हो, है कि नहीं? फिर वही बातें, जान उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मेरी ऐसी निंदा कर दी। जैसे एक प्रश्न किया जाए इसी के ऊपर, माइक है होता तो अच्छा लगता। प्रश्न ये है, या तो आप लोग बोल दीजिएगा मैं रिपीट कर दूंगा उत्तर। प्रश्न ये है कि बादल कहां रहता है, बादल की स्थिति कहां है? हाँ, यही भागवत में प्रश्न रखा गया था। बादल की स्थिति जो है भागवत में नहीं है, सॉरी, बादल की स्थिति आकाश में नहीं है, बादल तो हवा में टंगा हुआ है, और आप कह रहे हो कि बादल आकाश में है। अच्छा चलिए, दूसरा प्रश्न, आकाश का रंग क्या है? नीला। आकाश का रीला रंग होता है? आकाश का कोई रंग नहीं होता है। लेकिन हम सो कह रहे हैं आकाश के नीला रंग होता है। तो जिस प्रकार से बादल हवा में होता है लेकिन उस गुण को हम आकाश में आरोपित कर रहे हैं, आकाश का रंग नीला नहीं होता लेकिन हम वह नीला रंग आकाश पर आरोपित कर रहे हैं, उसी प्रकार से आत्मा का इस देह द्वय यानी कि स्थूल और सूक्ष्म शरीर से कोई संबंध नहीं है। और कितने दुख की बात है कि हम इसी का एनालिसिस करते रहते हैं, इसने ऐसा कह दिया, उसने मुझे वैसा कह दिया और मैं इसको सुनकर बहुत दुखी हो गया और ये हो गया और वो हो गया। तो ये हमारी अज्ञानता है जिस प्रकार से हम आकाश में नीला रंग देख रहे हैं। तो इसमें अपने आप को अलग करने का प्रयास करना चाहिए, बुद्धि लगानी चाहिए। इसलिए रामानुज स्वामी ने अपने ग्रंथ वेदांत तत्व सार में वर्णन किया है कि आत्मा के मिलन का अर्थ है कि आठ तत्वों क्षिति, क्षिति मतलब आकाश, जल पावक मतलब अग्नि, गगन समीर मतलब हवा, अहंकार मन तथा बुद्धि से निर्मित शरीर से अपने को पृथक करके आत्मा अपने आप को सनातन रूप में श्री भगवान की सेवा में लगा लेता है। ये अर्थ समझ में आ रहा है आप लोगों को? अपने आप को इस शरीर से पृथक करने का अर्थ है कि अपने आप को भगवान की सेवा में लगाना, इससे निकलने का प्रयास नहीं करना। एक बहुत सूक्ष्म बात है, श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता में इस बात को बताते हैं कि भक्त ना तो इस शरीर को भोगना चाहता है और ना वो शरीर से निकलना चाहता है। ये बात तो समझ में नहीं आती पहले, क्योंकि हम बार बार सोचते हैं बैक टू गॉड हेड, बैक टू गॉड हेड, भगवान के धाम जाना है, भगवान के धाम जाना है, जाना है, इसको कोई बात नहीं है। लेकिन इसका प्रभुपाद जी बात को क्यों बोल रहे हैं? देखिए, जो व्यक्ति शरीर को भोगना चाहता है वह तो कर्मी है, ये तो आप समझते हैं, लेकिन जो इस शरीर से निकलना चाहता है वह मुक्ति कामी है, वह मुक्त होना चाहता है। लेकिन भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है, चाहे भक्त उसको भगवान उसको कुछ समय के लिए भौतिक जगत में रखना चाहें तो भौतिक जगत में खुश है तो नहीं कहना चाहिए, सेवा करने में सुख है, जैसी भगवान की इच्छा है वैसा रखें, तब हमें भक्ति का सुख प्राप्त होगा। तार मध्य मोक्ष वांछा कैटभ प्रधान, जहां होते कृष्ण भक्ति है अंतर्ध्यान। ये जो मोक्ष की इच्छा है कि मैं भगवान में जाके मिल जाऊं, इस जगत में बड़ा कष्ट है, वस्तुतः यह है ऐसी स्थिति में इस इच्छा में जो भगवान की भक्ति है वो अंतर ध्यान हो जाती है, गायब हो जाती है, क्योंकि इसमें कृष्ण को कोई सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं होती है। मैं इस बात शायद आप समझ पा रहे होंगे। तो अपने शरीर को त्यागने का अर्थ है, या अपने मन बुद्धि अहंकार से अपनी अपनी पहचान को त्यागने का अर्थ है कि भगवान की सेवा करने में संकल्पित हों, व्यवस्थित हों, और भगवान की ही सेवा करना है, भगवान का सेवा करते हुए अपने को समर्पित करना, ये अर्थ है। भौतिक तत्वों का भौतिक कारण भौतिक शरीर को सोख लेता है और आत्मा अपने आदि स्वरूप को ग्रहण कर लेता है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति श्री कृष्ण के शाश्वत दास की है। जब मनुष्य आत्मज्ञान के अनुशीलन से तथा भक्ति से इस भौतिक शरीर पर विजय प्राप्त कर लेता है तो वह अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त करके भगवान की भक्ति में लग सकता है। कुछ बातें महत्वपूर्ण है, इस श्लोक को हम थोड़ा समझेंगे। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। आध्यात्मिक जगत में हर जीव का भगवान से एक संबंध है, और उस संबंध का अर्थ है कि उसकी भगवान कृष्ण की एक विशिष्ट प्रकार से सेवा करने की इच्छा होती है। जैसे कोई जीव भगवान की पेड़ के रूप में सेवा करना चाहता है, कोई जीव भगवान की एक बाग के रूप में सेवा करना चाहता है, कोई घास बनना चाहता है। कौन घास बनना चाहता है, किसी को याद है? उद्धव जी बनना चाहते हैं, ब्रह्मा जी बनना चाहते हैं। तो हर जीव जो इस प्रकार से भगवान की एक विशेष प्रकार से सेवा करना चाहता है उसके अनुरूप उसको स्वरूप दिया जाता है या उसको स्वरूप है, वो जो सेवा भाव है वही स्वरूप के रूप में प्रकट होता है। अगर देखिए इन शब्दों को ऐसे समझ लेना चाहिए, कहेंगे अरे प्रभु जी स्वरूप तो हमेशा होता है। हाँ वो भी ठीक है, तो स्वरूप हमेशा होता है लेकिन हमको दिया जाएगा या हमारे सामने प्रकट किया जाएगा, ये शब्द हैं जिनका उपयोग करके हम समझाने का प्रयास करते हैं, जिसे कहा जाता है शाखा चंद्र न्याय। चंद्रमा जो है वह माता को बच्चा पूछता है कि चंद्रमा कहाँ है, तो माता कहती है कि ये पेड़ के दो शाखा के बीच में है, तो उसे करके काम चला दिया जाता है, जबकि चंद्रमा की स्थिति बिल्कुल अलग है, बहुत अहद कह सकते हैं आकाश में है। तो इन बातों के द्वारा, शब्दों के द्वारा समझना चाहिए कि भगवान का नाम जब हम करते हैं धीरे धीरे करके, यह जो स्वरूप है यह सेवा की इच्छा हृदय में जागृत होती है। चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन है कि जब हम आगे प्रगति कर लेते हैं और भगवान के जो दिव्य भक्त हैं उनका आदान प्रदान भक्तों से भगवान से सुनते हैं, तो उस भक्त की भी इच्छा हो जाती है कि मैं भी इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करूं, और इसके द्वारा धीरे धीरे इसका स्वरूप प्रकट होता है। तो यहां हमने श्लोक के बारे में क्या सीखा, दधीचि ऋषि ने, अभी क्लास खत्म नहीं है, ऐसा लग रहा होगा खत्म हो रहा होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि आप श्लोक रिवाइज करा देते हैं। श्लोक में ये बोल रहे हैं कि इस प्रकार से सोच करके कि हमें दूसरों के कल्याण के लिए अपना शरीर देना चाहिए, दधीचि ऋषि ने जो अथर्व मुनि के पुत्र थे अपने शरीर को त्याग दिया और अपने को स्वयं को भगवान को समर्पित कर दिया। इस संबंध में किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो हम उनके पिछले विचारों पर विचार करेंगे। क्या किसी का कोई प्रश्न है यहां तक श्लोक के संबंध में? ओके, 1 2 3 ओके, गो फॉरवर्ड। हम अब पिछले श्लोकों को दिखाया जाए तो अच्छा रहेगा। श्लोक क्रमांक 9 बहुत सुंदर है। वो कह रहे हैं, एतावान अव्ययो धर्म पुण्य श्लोके रूपासित यो भूत शोक हर्षाभ्याम आत्मा शोचति हरिष्यति। बहुत सुंदर, एतावान अव्ययो धर्म। क्या श्लोक दिख रहा है यहां पे? नहीं, बहुत सुंदर श्लोक है। एतावान अव्ययो धर्म पुण्य श्लोके रूपासित, बहुत सुंदर। वो कह रहे हैं कि देखिए, अनुवाद देखिए, यदि कोई मनुष्य दूसरे जीवों के दुख से दुखी होता है और उनके सुख को देखकर प्रसन्न होता है तो पवित्र तथा परोपकारी महापुरुषों द्वारा ऐसे पुरुष के धर्म को अविनाशी माना जाता है। कितना सुंदर श्लोक है। कभी कभी हम सोचते हैं कि प्रचार करना या दूसरों की भक्ति में मदद करना ये झंझट काम है। क्यों झंझट है? क्योंकि वह भक्ति में आते नहीं है या आने के बाद भी सीरियस नहीं होते, हमारी बात सुनते नहीं है। इतना झंझट लेने की क्या जरूरत है, हम सब अपना भजन करें बस, ठीक है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी से संबंध में मैंने पूछा कि महाराज कितना प्रचार करना चाहिए और कितना आचरण करना चाहिए, तो महाराज ने एक ही लाइन में बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, हमेशा अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए और हमेशा दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कितना सुंदर है ना। अगर हम खुद ही जप नहीं कर रहे तो फिर हम दूसरों को हेल्प कैसे कर सकते। और मैं कहूं भाई देखिए, आप लोगों का प्रसादम से पहले माला हो जाना चाहिए और मैं खुद ही नहीं कर रहा तो मेरे शब्दों में कोई शक्ति नहीं है, मेरे शब्दों में कोई मतलब नहीं है, मैं कोई सच्चा फॉलोअर अनुगामी नहीं हूं श्रील प्रभुपाद जी का। तो आवश्यक है कि हम सब भक्त लोग आचरण तो अच्छा करें, इसके लिए इस कारण से ताकि हम लोग शक्ति प्रदान, हमें शक्ति प्रदान हो ताकि हम दूसरों को भक्ति में कुछ प्रेरणा दे सके। स्वाभाविक सी बात है, अगर हम कुछ कर रहे हैं और फिर उसको बोलते हैं तो उसका प्रभाव होता है, और अगर हम स्वयं बोल रहे हैं और खुद नहीं कर रहे हैं तो मन में, अगर हम अच्छे भक्त हैं थोड़े से भी, तो भगवान अंदर से बोलने लगते हैं, तुम तो उसे कर नहीं रहे और दूसरों को बोल रहे हो। तो इसलिए आवश्यक है, और इसीलिए लोग कभी कभी प्रचार भी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि लोग उनको देखेंगे। जैसे मैंने एक हमारे आश्रम में एक भक्त आए थे 2-3 महीने के लिए मृदंग सीखने के लिए, तो मैंने कहा रह तो सकते हो आश्रम में, तो नहीं थोड़ा हमने रहने की व्यवस्था करी थी, लेकिन आपको रोज मंगल आरती में आना होगा, जप करना होगा, जब में सोएंगे नहीं और बात नहीं करेंगे। तो 2 महीने के बाद जब वो जा रहे थे तो उन्हें बोला, प्रभु जी मैं रोज देखता था आपको कि आज तो आप सोएंगे ना। तो वो काफी उसको अच्छा लगा कि हम लोग नहीं सोते। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि हम प्रचार इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमको ऑब्जर्व किया जाएगा कि इतना प्रचार कर रहे हैं, इतना बोल रहे हैं कि क्या ये अपने जीवन में भी आचरण करते हैं। एक बार मुझे याद है, मैं कई बार बोलता हूं कि जब के समय बात नहीं करना चाहिए। एक दिन यहां पे कुछ प्रॉब्लम हो गया था, मैं नहीं करता हूं बात, और मुझे अपना माला थोड़ा रह गया था तो मुझे क्लास में भी आना था, और उस वक्त मैंने जो है कुछ माला करते करते यहां पे काम कर लिया। तो एक भक्त बोला, देखो प्रभु जी तो बोलते हैं कि जब के समय बात नहीं करना चाहिए, देखो ऐसे कार्य कर रहे थे। तो उसने रोज नहीं देखा कि मैं बात नहीं करता, एक दिन पकड़ लिया, उसका जो है अप्लाई करता है। तो ये हमें देखना चाहिए, यदयत आचरति श्रेष्ठ तत्त एव जनाः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जैसा हम आचरण करेंगे उसी के अनुसार लोग भगवान की सेवा करेंगे। ये बहुत गंभीर बात है। परम पूज्य राधानाथ महाराज बहुत गंभीर बात बोले, बोले कि वैष्णव के आचरण को देखकर ही लोगों की विष्णु में श्रद्धा होगी। इसीलिए भगवान हमको यहां रखे हुए, नहीं तो अब तक भगवत धाम भेज दिए होते। आपको मजाक लग रहा है? जीव गोस्वामी कहते हैं कर्म का आभास मात्र देते हैं भगवान। हम लोग कर्म के प्रधान में कर्म के अनुसार नहीं चल रहे, मेरे को एक बार रिश्तेदार ने पूछा, अरे हरे कृष्णा करने से भगवत धाम चले जाते हैं तो आप क्यों नहीं गए? तो मैंने कहा इसलिए नहीं गया ताकि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकूं, अगर मैं चला गया होता तो पूछते किससे। तो यही बात है कि भगवान अपने भक्तों को कुछ जगत में रखते हैं ताकि जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है भगवान की भक्ति का ज्ञान वह दे सकें और अपने आचरण से दिखा सकें। इसीलिए मैं भक्तों को बोलता हूं, ठंड है मैं मानता हूं, लेकिन अगर भक्त लोग आकर के जप करें मंदिर में तो बाहर के लोग भी आकर के देखेंगे और बाहर ही उनका प्रचार हो रहा होता है कॉर्नर में कि आप हरि नाम जप कीजिए। और अगर मान लीजिए वो पीछे मुड़ के देखेंगे कि आपके भक्त तो कोई जप नहीं कर रहे, हम ही से जप करा रहे हो वहां पे 5:30 या 6:30 में, तो कैसा लगेगा बताइए। तो ये हम सभी भक्तों का ये कर्तव्य है। या जैसे मंगल आरती होती है, मैं कई बार इस बात को बोलता हूं, मंगल आरती होती है सब भक्त अगर एकदम मंगल आरती में आते हैं, नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, तो बाहर के लोग भी आकर के सोचेंगे हाँ भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज है, हमें भी करना चाहिए। फिलोसफी तो लोगों को बाद में समझ में आती है, पहले तो उनको ये देखना चाहिए कि भक्त बड़े खुश हैं, तो अब उनको जिज्ञासा होगी ये लोग खुश क्यों हैं। एक सच्ची घटना है, एक विदेश में भक्त थे और वह है, मैं खाली इस बात पे बोल रहा हूं कि किस प्रकार से हम लोग प्रचार कर सकते हैं अगर हम स्वयं भक्ति में उत्साहित हों और हृदय में भावना तब आई जाती है। तो एक भक्त था, व्यक्ति था, वो हरि नाम नहीं करता था, बहुत से भक्तों ने इसे प्रचारित किया, फिलोसफी समझाई, नहीं बताए, नहीं हुआ। एक यंग भक्त था, बिल्कुल यंग मतलब जवान व्यक्ति, और उसको हरि नाम में समाव उसको बहुत आनंद आता था। तो उस व्यक्ति के पास गया, उसने बोला, आप इंग्लिश में बोला, यू आर रियली मिसिंग द हाइएस्ट थिंग, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो मतलब आप जो है एक बहुत उच्चतर सुख का वंचित रख रहे हो अपने आप को। तो उस नए व्यक्ति के सुख को देख करके व्यक्ति हरे कृष्ण करने लगा, ये हरे कृष्ण में इतना सुखी क्यों है। प्रभुपाद जी अपने वीडियो लेक्चर में बोलते हैं कि यदि हम भगवत प्रेम में उन्मत्त हो जाएं तो पूरा विश्व में पालन करेगा, क्योंकि व्यक्ति सुखी देखेगा भक्तों को। इसलिए आवश्यक है कि हम स्वयं भक्ति में सुखी हों। बात यहां पर एक और बात आ रही, दूसरे के दुख को देखकर दुखी होना, ये बहुत गंभीर बात है कि जगत में लोग बहुत दुखी हैं, सब लोग दुखी हैं, लेकिन दुखेषु सुख मानिना, दुख में सुख मान रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात जो है यहां पे बोली जा रही है कि देखिए, एक वैष्णव की कृपा व्यक्ति के भौतिक स्थिति के अनुसार नहीं होती है। वैष्णव ये नहीं देखते कि भाई ये जो गरीब है ये तो नारायण है और जो पैसे वाले हैं वो क्या है, वो लक्ष्मी है। मुझे पता नहीं वो क्या सोचते हैं, ऐसा नहीं सोचते। वो जानते हैं कि जो भी जीव भगवान की भक्ति से विमुख है वह दुखी है। कभी कभी लोग सोचते भी है कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, 10th पास नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, लेकिन वस्तुतः पुत्र जन्म देने के बाद यही बोलना चाहिए, बेटा तू ध्रुव महाराज जैसा भक्त क्यों नहीं बन रहा, मेरा उद्धार क्यों करेगा, कैसे होगा। हाँ सही कह रहे हैं, यही बात हुई कि खुद ही पता नहीं है कि मेरे क्या फायदा हो। जैसे कि कई बार आप लोगों को अनुभव हुआ होगा, नाम जप करते करते बहुत सुख प्राप्त होता है और वह सुख आप जानते हो कि धन से हम खरीद नहीं सकते। देखिए जब मैं बात बोल रहा हूं तो मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं थ्योरी में बोल रहा हूं, और मैं अगर 2-4 लोगों के हाथ खड़ा कराऊंगा तो शायद वह नम्रता में हाथ ना खड़ा करे, लेकिन सभी भक्तों का अनुभव होगा स्पेशली वृंदावन में कि आप नाम जप करते हैं तो एक विशेष, अगर अच्छे से करते हैं सोते हुए बातें करते हुए, है ना, तो बहुत सुख प्राप्त होता है। और इस सुख को हमें पाना है, छोड़ना नहीं है, इस सुख का हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है घर में जाने का अपने पिता के पास, उसी तरह इस सुख का, इस आध्यात्मिक सुख का हमारा अधिकार है। और जब हम अनुभूत करते हैं तो हम चाहते हैं कि अन्य लोग जो गरीब हैं, इस सुख से वंचित हैं, उनको ये प्राप्त होना चाहिए। अब उसके लिए हमें डांटना पड़े, समझाना पड़े, प्रसाद खिलाना पड़े, कुछ भी हो, लेकिन यह तब यह भावना आती है कि मैं प्रचार करना है। और ऐसा नहीं कि हम थोड़ा मृदंग बजा के आ गए, 2-4 लोगों की भीड़ इकट्ठी कर ली, नहीं, उस व्यक्ति को मुझे भगवत धाम लेके जाना है, इतना प्रयास करना है, खून बहाने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक खून, ये वाला खून नहीं। जब भी कोई मुझसे खून मांगता है, बोलता है ग्रुप क्या है, हमने कौन सा खून चाहिए, ओ नेगेटिव, मेरा बी पॉजिटिव है। तो मैं शरीर का खून नहीं दे रहा हूं, लेकिन इस खून का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना। खून हमारे पास कम है तो खून दे देंगे तो फिर हम सेवा कैसे करेंगे। इसी बात को महाप्रभु ने कहा है, प्राणेर अर्थेर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। अपने प्राण से, अपने धन से, अपनी वाचा से यानी वाणी से, अपनी बुद्धि से हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए ही सोचना चाहिए, कल्याण के लिए ही कार्य करना चाहिए। और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बोलते हैं, जो कहते हैं कि अगर कोई ना भी कर पाए, केवल सोच रहा है, तो भी भगवान उसको बहुत महान मानते हैं। कर नहीं पा रहा है, खाली सोच रहा है। ऐसी बात को परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे थे कि कोई दूसरों के दुख को देख करके दुखी हो जाए, वो कुछ कर ना सके, तो भी भगवान की यही पे अप्लाई होगा कि उसका धर्म जो है वो अविनाशी है, आपको अक्षय तृतीया के लिए वेट करने की आवश्यकता नहीं है। होता है ना, अक्षय तृतीया में जो कुछ करोगे तो अविनाशी होगा, लेकिन ये अगर भाव रहे कि दूसरों को दुख देख के हम दुखी हो रहे हैं, उनके सुख को देखकर हम सुखी हो रहे हैं, तब हमारा जो धर्म है, भक्ति है, वो सब, वैसे तो भक्ति अपने अविनाशी होती ही है, लेकिन इस प्रकार से धर्म का अनुशीलन किया जाता है तो अविनाशी होता है। विस्तार क्या कहना चाहिए, हमारा जो क्षेत्र है, क्या कहेंगे उसको, हमारा सर्कल ऑफ कंसर्न, मतलब हमारा जो क्षेत्र ही कहा जाए, उसका विस्तार होना चाहिए। नहीं तो प्राय व्यक्ति केवल अपने परिवार और समाज के ही बारे में सोचता है, ये बात यहां से सीखना चाहिए, बहुत सुंदर बात है। और इसी प्रकार से अपना शरीर दे रहे। एक चीज और मैं कहना चाहता था, ये जो व्यवस्थिता शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है। भगवत गीता में इसको आया है, श्लोक आता है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव मंतव्य साधुरेव समंतव्य सम्यग व्यवस्थित हिस्सा। व्यवस्थिता शब्द वहां पे भी बहुत आया, मैं इसको बोलना ही चाहूंगा इसके बारे में। अपि चेत सुदुराचारो, शायद आप श्लोक जानते भी होंगे, अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 30, अपि चेत सुदुराचारो, जो दुराचार है हो गया मतलब खराब आचरण वाला, और सुदुराचार मतलब बहुत बढ़िया से बुरे आचरण वाला व्यक्ति, फर्स्ट क्लास के शराबी ऐसा कहा जाए तो एक नंबर के शराबी या एक नंबर के दुराचारी, अगर वह भी अगर इस प्रकार का व्यक्ति है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाग, अनन्य भाग, अनन्य भाव से मेरा भजन कर रहा है और किसी देवता का आश्रय नहीं ले रहा है, तो भगवान कहते हैं साधु रेवस मंतव्य, उसको साधु ही मानो। क्यों माने साधु, तो कह रहे हैं सम्यक व्यवस्थित हिस्सा, सम्यक व्यवस्थित हिस्सा, उसका जो निश्चय है, उसका व्यवस्थित, ये बिल्कुल परफेक्ट है। क्या परफेक्ट है, क्या है इसका, तो आचार्यगण समझाते हैं, कहता है कि भगवान मैं ये अपराध कर रहा हूं, ये मुझसे पाप हो गया, इसकी वजह से मुझे नरक भी क्यों ना जाना पड़े, लेकिन मैं भगवान कृष्ण की भक्ति को नहीं त्यागूंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और ऐसा व्यक्ति शुद्ध भक्त है। इसका क्या प्रमाण है, भगवान स्वयं प्रमाण है, साधु रेव, साधु ही मानिए। इसीलिए फिर ध्यान देना चाहिए कि किसी भक्त से कोई गलती हो जाती है तो तुरंत कमेंट करने से पहले 5000 बार सोच लीजिए कहीं वह सम्यक व्यवस्थित तो नहीं है। और अगर हम कमेंट भी कर रहे हैं तो आकाश वाला धारण समझ लीजिए, हम खाली शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर भी देखते नहीं, स्थूल शरीर का ही एनालिसिस कर रहे हैं, उससे ये गलती हो गई, उससे ये हो गया, उससे ये हो गया, बहुत बड़ा उसका प्राइस, बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा। ऐसे ही भक्त पे उपहास नहीं करना चाहिए। किसी का प्रारब्धवश, किसी भी कारणवश, भगवान की इच्छा से किसी का कोई पतन हो जाता है तो हमें कमेंट नहीं करना चाहिए, उनके गुरु महाराज, उनके अथॉरिटी उसको देखें। तो व्यवस्थिता शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको शिला बलदेव विद्याभूषण समझाते हैं, कोट करते हुए कहते हैं कि देखिए आप चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा देखिए, देखे ही होंगे आप, कल भी चंद्रमा काफी गोल था, पता नहीं पूर्णिमा आने वाली है, आज पूर्णिमा है तो अच्छी बात है। मैं शाम के समय देख रहा था तो पूर्णिमा का चंद्र जो है क्या पूरे पूरे विश्व को या पूरे समाज को रोशनी देता है? यस, देता है। क्या सारी औषधियों में या सारे ये जो सब्जियों में रस भरता है? भरता है। क्या उसके दाग हमको दिखते हैं? अरे भाई ये हद हो गई, आपने चंद्रमा देखा नहीं लग रहा पूर्णिमा का, खाली हेलोजन ही देखते रहेंगे क्या? पूर्णिमा का चंद्र देखेंगे तो आपको उसके दाग भी नजर आते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह अन्यों के जीवन में रस नहीं भर सकता, है ना? कितना सुंदर उदाहरण आचार्यगण वहां पर बताते हैं। उसी प्रकार से भगवान का भक्त कभी कुछ पूरी बुरी आदत वश कुछ गलत कर बैठे, लेकिन इस ये देखिए कि उसका व्यवस्थित क्या है, उसका निश्चय क्या है, कुछ भी हो जाए मैं भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ूंगा। उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में भी कि अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, भक्ति को त्याग देना चाहिए और फिर हमें प्रायश्चित करना चाहिए, यही है अर्थ? नहीं, कुछ भी हो जाए तो भगवान की भक्ति नहीं त्यागना चाहिए, इसमें बड़े अपराध लग जाएंगे। क्यों? अगर हम ये कह रहे हैं कि हमसे कुछ पाप हो गया और हम भक्ति छोड़कर कुछ और प्रायश्चित करें तो आप ये सोच रहे हो कि वो जो प्रायश्चित है वह भक्ति से और अधिक शक्तिशाली है, तो ये भक्ति के प्रति अपराध हो जाएगा। इसलिए भक्ति देवी से या भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान हमारी मति आपके चरणों में लगी रहे, और योहम सोहम दास तवाहम, जैसा भी हूं भगवान मैं आपका हूं, आपकी सेवा में मुझे नियोजित रखिए। जैसे आप देख सकते हैं भगवान श्री राम ने सुग्रीव जी को दायित्व दिया था कि आप माता सीता को ढूंढ करके लेके आइए, और सुग्रीव जो है वह तारा के संग इंद्र तृप्ति में लग गए, लेकिन भगवान श्री राम ने डांटा नहीं। काफी समय बीत गया और वह कोई रिपोर्ट नहीं लाए, रिपोर्ट क्या लाएंगे, वो तो अपनी भोग में लगे हुए थे। तो फिर जब लक्ष्मण जी और भगवान राम सुग्रीव जी की गुफा के पास में आते हैं, तो लक्ष्मण जी कह रहे थे अभी मारता हूं उसको मैं बाहर निकालने वाले थे, लेकिन फिर जो है भगवान श्री राम ने कहा नहीं, आप जाके पहले समझा दीजिए। कभी भी भगवान अपने भक्तों की गलती को नहीं देखते, शीलेन निर्मल मति, ऐसे करके श्लोक आता है कि भगवान अपने भक्तों की गई छोटी से छोटी सेवा को बहुत बड़ा मानते हैं और उनके किए गए बहुत बड़े अपराध को भी नहीं गिनते। भगवान तो ऐसे शीलवान है कृष्ण कि जो उनका द्वेषी है, जो उनसे खराब बर्ताव करता है, उससे भी बैर भाव नहीं रखते। तो आप कहेंगे अरे नहीं, वो तो गला काटते हैं। गला कहां काटते हैं? गला काटते हैं लेकिन अपने धाम में, वो तो ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन करके अपने धाम में भेज देते हैं। जैसे महाराज बता रहे थे कोई गुंडा है तो गुंडे को थोड़ा बोलेंगे हमारा फ्लैट खाली है वहां जाके रहो, क्या यहां पे गुंडागिरी कर रहे हो, लोफरगिरी कर रहे हो। लेकिन भगवान तो ऐसे ही करते हैं, पूतना का उद्धार किया गुंडी का कि नहीं, पूतना का उद्धार किया, उसके बाद अघासुर का उद्धार किया, और उसके बाद बकासुर का किया, फिर अघासुर का किया। तो ही ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो रहे हैं, जब असुरों का उद्धार करने में तुले हुए हैं आप, तो जो ब्रजवासी हैं उनको आप क्या देंगे। तो उसका निष्कर्ष यही रहा कि भगवान हमेशा कृतज्ञ रहेंगे, तो भगवान के गुणों को सुनना चाहिए और कभी भी व्यक्ति को भक्ति को त्यागना नहीं चाहिए। ठीक है, हमने यहां पे सीखा कि दूसरों के दुख में दुखी। अब आप ये सोचिए, इस संबंध में एक और अच्छी घटना है। महाराज जी से सुना था हनुमान प्रसाद पुद्दार जी की, महान वैष्णव थे और प्रभुपाद जी के मित्र थे। तो एक बार घर में उनके यहाँ पे लौकी की सब्जी बनी थी, और भी वस्तुएं बनी थी लेकिन लौकी जो है बनी थी। और आप जानते हैं कि लौकी कभी कभी कड़वी होती है कुछ केमिकल या जो भी कारण से। तो जब लौकी की सब्जी उनको वरिष्ठ थे सबसे पहले उनको सर्व की गई, तो बोले लौकी और लेके आओ। खाना बनाने वाला जानता नहीं कि स्वाद क्या है, पूरी लौकी खा गए, थोड़ी सी शायद रह गई होगी। तो दूसरे भक्त ने जब चखा लौकी तो ने कहा लौकी तो कड़वी है। तो ने कहा आप लौकी सारी क्यों खा गए? कहते हैं कि कड़वी मैं खा गया ताकि बाकी लोग जो है अन्य वस्तुएं खा सके। अभी बताइए कि अभी जो प्रसादम होने वाला है उसमें क्या कड़वी वस्तु खाने वाले हैं या हलवा हम ज्यादा खाने वाले, बताइए। ये स्थिति होती है कि हलवा मेरे को मिल जाए, अधिक मिल जाए, और बगल वाले को नहीं मिले तो कोई बात नहीं। तो वैष्णव तो आप समझ सकते हैं कि ये वैष्णवता में थोड़ी कमी है हमारे। कभी सोचते हैं कि खराब सब्जी हमको मिल जाए, बगल वाले को अच्छा मिल जाए? कभी नहीं सोचते। अभी तो 14 आइटम होंगे, तो अगर 13 आइटम मिल जाएंगे तो 14 को सोचेगा आदमी, वो 14 नहीं मिला। यहीं पे वो बात, इसी लाइन पे बैठा था बंगत एक भगत, 12 आइटम थे उस दिन, शायद परम पूज्य जयप्रताप महाराज जी का व्यास पूजा था, तो 13वां आइटम के पीछे पड़ा था, 12 आइटम खा नहीं पाया और 13वें के पीछे पड़ा है। तो ये हमारी चेतना की निम्नता को दिखाता है। ये सोचना चाहिए कि हम दूसरे भक्तों की सेवा किस प्रकार से कर सकते हैं, दूसरे लोगों को कैसे लाभ हो सकता है हमारे धन से, हमारी वाणी से। जो लोगों को शास्त्र ज्ञान भी है उनको केवल शास्त्र ज्ञान को पी नहीं लेना चाहिए। हाँ, हम सीख गए कृष्ण भगवान हैं और उनकी सेवा करनी चाहिए, या हरे कृष्ण मंत्र, हाँ बस ठीक है, हम समझ गए हम भक्ति तो कर रहे हैं। नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। यही सब श्लोकों से सीख रहे हैं और इसके द्वारा हमारा धर्म जो होगा अविनाशी होगा, और ये बहुत हमारे लिए लाभकारी बात है। एक श्लोक और देख लेना चाहता हूं, उससे पहले वाले को बोल रहे हैं 8वें को, कि जो व्यक्ति दूसरे दुखी प्राणियों पर दया नहीं दिखाता और धार्मिक नियमों के लिए इस असुक्षण कीर्ति के महान कार्यों के लिए अपनी नश्वर शरीर की बलि कर सकता है वह निश्चय ही जड़ प्राणियों तक के द्वारा धिक्कारा जाता है। ये बहुत सुंदर बात है कि मतलब ये जो हमारा शरीर है यूजलेस शरीर है, चाहे वो IIT से बीटेक हो, चाहे एमटेक हो, चाहे कहीं का भी हो, वो शरीर तो शरीर का एक ही बराबर है, वो एकदम धिक्कारने योग्य है। अगर वह दूसरों के कल्याण के द्वारा कल्याण में नहीं लगता है तो वह पेड़ों के द्वारा धिक्कारा जाता है। अब मैं से विचार कर रहा था कि क्यों बोल रहे हैं पेड़ों के द्वारा दिखाया जाता है, क्योंकि पेड़ अपना फल एक भी नहीं खाते। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे आप सही कर दीजिएगा, कोई ऐसा पेड़ है जो अपना फल खुद खाता हो? आम का पेड़ कितना मीठा फल देता है, एक भी फल वो नहीं खाता और सारी धूप सहन करता है, लेकिन फल दूसरों के लिए होते हैं। यहां तक कि जो उसकी पेड़ की जड़ काट रहा, सॉरी शाखा काट रहा होगा, उसको भी फल प्रदान करता है, उसको भी छाया प्रदान करता है। यह है सच्चे वैष्णव के लक्षण। ये गुण मेरे अंदर है नहीं, लेकिन इन गुणों की चर्चा करने से हम इन गुणों को प्राप्त करने की इच्छा लालसा को जागृत करते हैं। बहुत कठिन गुण है, बहुत कठिन गुण है, लेकिन ये गुण हो जाए तो महाप्रभु कहते हैं कि भगवत प्रेम बड़ी आसानी से बढ़ जाएगा, बहुत प्राप्त हो जाएगा। खैर ये भगवान की भक्ति करने से ही आता है। बहुत सुंदर है कि एक पेड़ अपने फल कभी नहीं खाता है, उसके फल तो दूसरों के लिए होते। इस संबंध में छोटी सी कथा बोलकर मैं रुकूंगा। हाँ, तो वो पेड़ धिक्कारेगा कि ये देखो इसको इतना शक्तिशाली जीवन में प्राप्त हुआ, मानव जीवन प्राप्त हुआ, और ये अपना जीवन तो निष्फल गया ही और दूसरों के लिए भी कोई कार्य नहीं कर सका, तो पेड़ भी धिक्कारते हैं। एक संबंध में कथा बोल के मैं विराम देंगे। भगवान बुद्ध की कथा मैंने सुनी थी, पढ़ी थी एक बचपन में, बड़ी अच्छी बात थी। भगवान बुद्ध एक पेड़ के पीछे बैठे हुए थे, नीचे बैठे थे, वो फल वाला पेड़ था। तो एक बच्चे लोग स्वाभाविक रूप से पत्थर मारते हैं, तो एक पत्थर भगवान बुद्ध को लग गया, और जब बच्चे आए तो बच्चे भयभीत हो गए कि अरे कहीं शाप दे देंगे ना, क्या होगा, साधु हैं, तो वो रोने लगे। तब उनको और भय हो गया, अरे इनको तो बहुत दुख हुआ है, लग रहा है बहुत कष्ट हुआ है। तो बुद्ध भगवान से ने पूछा, हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपको कष्ट दिया, आप रो रहे हो, इससे आपको दर्द हुआ, किस वजह से आप रो रहे हैं? तो कहा, नहीं मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि आपने मुझे पत्थर मारा, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं इस पेड़ से भी हीन हूं। क्यों? क्योंकि जब आप पेड़ को मारते हो पत्थर तो आपको फल मिलता है, और जब आपने पत्थर मेरे को मारा तो मैं आपको भय दे रहा हूं। कितना सुंदर शिक्षा है, कितना सुंदर शिक्षा है। तो बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी इस प्रकार की भावना हमको सुनते हैं तो कम से कम हृदय में लालसा होनी चाहिए कि हमारा कोई अगर गलत भी करता है तथाकथित रूप से शरीर का या मन का, हम उसके लिए कल्याण के बारे में सोचें। कोई प्रश्न है तो मैं लूंगा, नहीं तो समय हो गया है। ओके, सो शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।